जाति की हो और सेव भी किसी और जाति का हो, प्रीत किसी और जाति की हो और प्रीतम किसी और जाति का हो, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तब ये जो स्थूल जो आपका जीवन है, ये जो स्थूल आपका जीवन है, वो जीवन क्या हो जाता है कि वो जीवन एक केवल साधन का क्षेत्र रह जाता है। कैसे, एक विचार कीजिए कि जब आप सेवक अपने को मान लेते हैं, जब आप सेवक अपने को मान लेते हैं तो आपकी प्रत्येक प्रवृत्ति में सेवा का रंग आ जाता है, सेवा का प्रभाव आ जाता है। तो जब सेवा का प्रभाव आ जाता है तो प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित में होने लगती है, दूसरों के हित में, अपने सुख में नहीं। और जब तक हमारी प्रवृत्तियों में सेवा का रस नहीं आता तब तक प्रत्येक प्रवृत्ति अपने सुख में होती है, और जहां अपने सुख में प्रवृत्ति हुई मां रसदाता का पद नाश हुआ, मां रसदाता का पद नाश हुआ और रस के भोगता हो गए। और जो भोगता होगा भाई उसकी शक्ति का तो ह्रास होगा ही, उसमें तो पराधीनता आएगी ही, उसमें तो जड़ता रहेगी ही। इसलिए भाई आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो अस्तित्व है, वो क्या है, सेवा है, प्रीत है। सेवा किस काल में, प्रवृत्ति काल में, प्रीत किस काल में, निवृत्ति काल में। अब आप कहेंगे कि भाई सेव्य और प्रीतम क्या इनमें भी कोई भेद है, कि भाई इनमें कोई भेद नहीं है, एक बड़ा भारी भेद है। और वो भेद यह है कि जब हमारा प्रियतम सेव्य होता है तब वो व्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है, उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। वही प्रियतम सेव्य जब होगा तब व्यक्त रूप में होगा, प्रकट रूप में होगा। जिसको किसी ने जगत के नाम से कहा महाराज, किसी ने माया मात्र के नाम से कहा, किसी ने प्रतीति मात्र से कहा और किसी ने लीला शब्द से उसका वर्णन किया। तो भाई हमारा सेव भी क्या है, वही प्रीतम जो कि छिपा हुआ है। किसमें, जरा ध्यान दीजिए, प्रीतम किसमें छिपा हुआ है, प्रीत में, बाहर नहीं, प्रियतम प्रीत में छिपा है। तो प्रीत में छिपा हुआ प्रियतम जब प्रकट होता है तब प्रीत सेवा का रूप धारण करती है, प्रीत सेवा का रूप धारण करती है और सेवा होकर सेव्य को रस देती है। और जब प्रियतम अपने प्रकट रूप को अपने में विलीन करता है तब सेवा प्रीत होती है और प्रीत होकर प्रीतम को रस देती है। अब भाई सच बात तो यह है कि जब प्रीत होकर प्रीतम को रस देती है सेवा, तब प्रीतम जो है उस प्रीत का भोगी होता है। जैसे सेव्य सेवा का भोगी है ऐसे ही प्रीतम प्रीत का भोगी है। जब प्रीतम प्रीत का भोगी होता है तब ये पता चलाना बड़ा कठिन हो जाता है कि भाई कौन प्रीत है और कौन प्रीतम है, कौन प्रीत है कौन प्रीतम है। तो जहाँ प्रीत और प्रीतम के भेद का पता नहीं चलता वहीं लोग चुप होते हैं और चुप होकर वो रस कि जिसमें कभी क्षति नहीं और वो रस का भोगता कि जिसकी शक्ति का कभी ह्रास नहीं, तो दशा क्या होती है कि कल्पना करो कि किसी को ऐसी प्यास लगी हो जो कभी बुझे नहीं, और ऐसा जल मिल जाए कि जो कभी घटे नहीं, और ऐसा पेट हो जो कभी भरे नहीं, तब आप क्या कहेंगे, तब आपको कहना पड़ेगा कि प्रत्येक घूंट पर एक नया रस है। क्यों नया रस है, कि प्यास बुझती नहीं, जल घटता नहीं, पेट भरता नहीं, यही वास्तव में अगाध रस है, अनंत रस है, नित्य रस है, और वो रस मानव मात्र को प्राप्त हो सकता है। कब हो सकता है कि इसी बात को यदि हम लोग अपनी बोलचाल की सीधी सादी भाषा में कहें तो कहेंगे भैया अपने अधिकार का त्याग करो। बोले इससे क्या होगा कि इससे होगा ये कि आप साधक की सूची में आपका नाम लिख जाएगा। बोले हम तो ये नहीं कर सकते। अगर आप ये नहीं कर सकते तो सरकार साधक तो नहीं हो सकते, चाहे आप ब्रह्म भले ही हो जाएं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं कि आप ब्रह्म नहीं है, सचमुच आप ब्रह्म है, पर साधक नहीं हो सकते। और मानव सेवा संघ का जो दृष्टिकोण है वो साधन द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का है। आप कहेंगे ऐसा क्यों कि भाई देखो ब्रह्म में तो साधन का प्रश्न हो नहीं सकता, जगत में साधन का प्रश्न हो नहीं सकता। सोचिए जगत में कोई साधन का प्रश्न होता है, ब्रह्म में कोई साधन का प्रश्न होता है? साधन का प्रश्न साधक में होता है और साधक होता है मानव। ध्यान दीजिए, साधक होता है मानव, कोई और साधक बनने नहीं आता। तो हम और आप मानव सेवा संघ के दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो हम सबको साधक होना है, और साधक होने के लिए सबसे पहली बात हमें और आपको स्वीकार ही करनी पड़ेगी, और वो ये बात कि भाई हमें किसी से कुछ लेना नहीं है। क्यों? लेने के लिए हमारा जीवन होता तो मानव जीवन नहीं होता महाराज, तो क्या होता? बोले पशु जीवन होता। क्योंकि पशु जीवन में लेने की बात है और आप कहते हैं कि पशुओं से तो बहुत लाभ होता है, वृक्षों से तो बहुत लाभ होता है, तो वृक्षों से जो बहुत लाभ होता है वो तो लाभ लेने वाला ले लेता है, वो बेचारा देता थोड़ी है, वो थोड़ी कहता है कि हमने इसलिए हो गए हैं कि हम तुमको छाया देंगे, कि हम तुमको फल देंगे, कि सूखने पर लकड़ी देंगे। ऐसा बेचारा अगर वृक्ष कहता है तब तो ये मानना चाहिए कि वो सृष्टि नहीं है, वो वृक्ष नहीं है, वो तो प्रभु है। क्योंकि जो नहीं लेता और देता है ये प्रभु का स्वभाव, ध्यान दीजिए, जो देता है और लेता नहीं वो प्रभु का स्वभाव, और जो देता है और लेता है ये दोनों बातें हैं, ये असाधक का स्वभाव, और जो देने के लिए तत्पर है और लेना छोड़ता है ये साधक का स्वभाव, और जो केवल लेता है ये जड़ता और कुछ नहीं है। चाहे वो जड़ता वृक्ष में आरोप करें, चाहे वो जड़ता पशु पक्षी में आरोप करें, और चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन में आरोप करें, जो केवल लेता ही लेता है उसी का नाम जड़ है, जड़ और किसी का नाम नहीं। चाहे कोई मनुष्य की आकृति में हो और कहे भाई हमारा जीवन तो लेने के लिए हुआ है, तो भाई जड़ की इससे ऊंची और कोई परिभाषा नहीं है। जड़ वो जो केवल लेता ही लेता है, और जो लेता देता है उसी को जड़ सिद्ध ग्रंथि कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो कभी लेने की सोचता है और कभी देने की है, कभी लेने की और कभी देने की, यही जड़ सिद्ध ग्रंथि है। और जो केवल देता है उस श्रेणी में दो ही का नाम आता है, या तो प्रेमी का या प्रेमास्पद का, और किसी का नहीं। इसलिए भाई अब ये विचार ये करना है कि क्या आप और हम साधक नहीं हैं? यदि हम और आप साधक हैं तो हमारे आपके जीवन में जो लेने और देने दोनों की जो बात है, कभी लेने की सोचते हैं और कभी देने की सोचते हैं, उनमें से एक बात निकाल देनी पड़ेगी। कौन सी? लेने की बात निकाल देनी पड़ेगी। तो जब हम अपने जीवन में से लेने की बात निकाल देते हैं, सच पूछिए उसी समय जड़ता से मुक्त होते हैं। जरा ध्यान दीजिए, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसका शरीर से संबंध रह सकता है? विचार तो करो। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसका शरीर से संबंध नहीं रह सकता, क्योंकि शरीर से तद्रूपता कामना पूर्ति के लिए अपेक्षित है, कामना निवृत्ति के लिए नहीं। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया आवेश में आकर, भावावेश में आकर, अरे भाई शरीर जो है ये साधन का क्षेत्र है, ऐसा प्राय कहते हैं ना। तो वो शरीर जो साधन का क्षेत्र है, वो इसी अंश में, किस मानव जीवन में आप लेना बंद कर सकते हैं, लेना बंद कर सकते हैं। तो भाई जब हम कुछ नहीं लेना चाहते हैं तब शरीर से संबंध नहीं रहता, और जब शरीर से संबंध नहीं रहता तब योग हो जाता है। देखिए योग शरीर के नाश करने से नहीं होता, तो ध्यान दीजिए, और योग शरीर को बनाए रखने से भी नहीं होता। आप कितना ही पुष्ट शरीर बना लीजिए, उससे कोई योग हो जाए कोई जरूरी नहीं है, और आप शरीर का नाश कर दीजिए उससे कोई योग हो जाए ये संभव नहीं है। योग कब होता है कि जब आपका शरीर से संबंध नहीं रहता। और शरीर से संबंध तोड़ने के दो उपाय, बड़े सुगम दो उपाय। एक उपाय तो यह है कि भाई हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, अपने अधिकार का जो त्याग है ये भी शरीर से संबंध तोड़ने का उपाय है। और दूसरा निज विवेक का आदर। आप कहेंगे कैसे कि भाई पता तो लगाओ कि हम क्या हैं, हम क्या हैं। ये जब पता लगाओगे तो अगर आपने मान लिया कि हम जीव हैं तो ये आपका ज्ञान नहीं है, ये आपका विश्वास हो सकता है। अगर आपने ये मान लिया कि हम ब्रह्म हैं तो ये भी आपका ज्ञान नहीं हो सकता, विश्वास हो सकता है। इसका कोई भाई बहन ये ना समझ बैठे कि मैं किसी के विश्वास को झूठ मानता हूं। मैं विश्वास को झूठ नहीं मानता, किंतु विश्वास को विश्वास मानता हूं, ज्ञान नहीं मानता। तो इसमें अंतर है। मैं ये नहीं मानता कि जो अपने को जीव मानता है वो उसका विश्वास झूठ है, या जो अपने को ब्रह्म मानता है उसका विश्वास झूठ है, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन उसको ज्ञान नहीं मानता, उसको विश्वास मानता हूं। तो ज्ञान आपको क्या है भाई, आपको ज्ञान क्या है? आपको केवल इतना ज्ञान है कि यह का नाम मैं नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यह का नाम मैं नहीं है, स्वीकृति का नाम मैं नहीं है। वही स्वीकृति का क्या है कि स्वीकृति जो साधन रूप स्वीकृति है वो तो कर्तव्य की प्रतीक है, और जो असाधन रूप स्वीकृति है वो अकर्तव्य की प्रतीक है। स्वीकृति के दो भाग होते हैं ना, साधन रूप स्वीकृति कर्तव्य की प्रतीक, और कर्तव्य मालूम क्या है, कर्तव्य क्या है, दूसरे का अधिकार। कर्तव्य का अर्थ ही है दूसरे का अधिकार, और अकर्तव्य क्या है कि अधिकार लालसा, अधिकार लालसा, अधिकार लालसा अकर्तव्य का वो बीज है जिसमें से समस्त अकर्तव्य उत्पन्न होते हैं। लेकिन आज आज अधिकार मांगने को विकास का साधन बताया जाता है, हैं? अगर अधिकार मांगना विकास का साधन है तो हिरास क्या है भैया, हिरास क्या है? यदि अधिकार मांगने का नाम चेतना है तो जड़ता क्या है? यदि अधिकार मांगने का नाम पूर्णता है तो अपूर्णता क्या है? ध्यान दीजिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह था कि भाई ज्ञान आपको इसी बात का होता है। किस बात का? कि पहला आपका ज्ञान यह है कि यह का नाम मैं नहीं है, दूसरा आपका ज्ञान यह है कि स्वीकृति का नाम मैं नहीं है। न स्वीकृति का नाम मैं है, न यह का नाम मैं है। तो ये तो हुआ आपका ज्ञान, ये तो हुआ आपका ज्ञान। इस ज्ञान का प्रभाव क्या होगा? इस ज्ञान का प्रभाव होगा अधिकार का त्याग। इस ज्ञान का प्रभाव, ये जो अधिकार त्याग की बात मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये बिना दार्शनिक भित्ति के नहीं करता हूं। ये दार्शनिक भित्ति है इस बात की कि जब आप यह का नाम मैं नहीं है तो बताओ आपका क्या अधिकार है। किसी बहन से पूछो, किसी भाई से पूछो कि शरीर से अलग जानकर, शरीर से अलग जानकर आपको साड़ी चाहिए, आपको जेवर चाहिए, आपको पुत्र चाहिए, आपको पति चाहिए, आपको बंधु चाहिए, अगर ईमानदार बहने तो नहीं चाहिए। किसी पुरुष से पूछो कि भाई शरीर से अलग जानकर आपको पत्नी चाहिए, भगिनी चाहिए, पुत्री चाहिए, अगर ईमानदार पुरुष है तो कहेगा नहीं चाहिए। तात्पर्य क्या, जिस समय आप अपने विवेक का आदर करते हैं और इतने अंश में कि जितने अंश में आप जानते हैं, मैं जीव हूं ये आप जानते नहीं मानते हैं, मैं ब्रह्म हूं ये आप जानते नहीं मानते हैं, मैं शिव हूं ये आप जानते नहीं मानते हैं। तो भाई मानने की बात तो पीछे कभी करेंगे, लेकिन जानने के आधार पर कोई भाई कोई बहन ये कह ही नहीं सकती कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। बस यही कह सकते हैं कि यह नहीं हूँ, यह नहीं हूँ, यह नहीं हूँ। निषेधात्मक ज्ञान है आपको अपने संबंध में, और प्रतीतात्मक ज्ञान है आपको जगत के संबंध में। ध्यान दीजिए, जगत के संबंध में आपका प्रतीतात्मक ज्ञान है। ये शब्द गलत बना वो सही भगवान जाने, यानी प्रतीति है जगत की, ज्ञान जगत का भी नहीं है सरकार है। और अपने संबंध में केवल इतना ज्ञान है कि यह का नाम मैं नहीं है, स्वीकृति का नाम मैं नहीं है। तो निषेधात्मक आप अपने संबंध में जानते हैं और प्रतीतात्मक आप जगत के संबंध में जानते हैं। तभी तो लोग कह देते हैं विचारशील कि हम कुछ नहीं जानते हैं, यही जानते हैं। ये जो बात कहते हैं वो असल पूछो तो उसका मूल यहाँ है कि जगत की प्रतीति है, प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति नहीं है। और जिसकी प्राप्ति नहीं है उसका ज्ञान कैसा, उसका ज्ञान कैसा? तो है क्या कि प्रतीति के आधार पर प्रवृत्ति है। अब वो जो प्रवृत्ति है उसके हैं दो रूप, अपने सुख के लिए कि दूसरों के हित के लिए। अगर अपने सुख के लिए प्रवृत्ति है तो जड़ता, तो जड़ता, और दूसरों के हित के लिए प्रवृत्ति है तो चिन्मयता, तो चिन्मयता। तो कहने का तात्पर्य यह था कि प्रवृत्ति काल में वही मैं, वही मैं कि जिसके संबंध में आपने निषेधात्मक निर्णय किया था, निषेधात्मक निर्णय किया था और यह कहा था कि भाई यह का नाम मैं नहीं है, स्वीकृति का नाम मैं नहीं है, वही मैं एक भाव शरीर में। यह जरा थोड़ी गंभीर बात आएगी। भाव शरीर, भाव शरीर किसे कहते हैं कि जिसमें आकृति पीछे हो और भाव पहले हो। और स्थूल शरीर किसे कहते हैं कि जिसकी आकृति पहले हो और भाव पीछे हो। अरे ये कौन है? बोलिए तो लाली है लाली। ये कौन है? यह लाला है लाला। माथे पे लिखा है, माथे पे लिखा है कि लाली है, इसके माथे में लिखा है कि लाला है। एक बार हमारे यहाँ सुदोध माता जी के पास एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे साधक आए, इनकम टैक्स ऑफिसर थे। तो सुदोध माता जी से पूछने लगे कि माता जी क्या आपको ये नहीं मालूम होता कि मैं स्त्री हूँ? तो माता जी बेचारी पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं, कहने लगी भैया मेरे क्या तुम्हारे शरीर में आधा शरीर स्त्री का नहीं है? अब चुप, वो समझती है कि शायद ये ज्ञान ध्यान छाट देंगे। वो बेचारी ज्ञान ध्यान क्या जाने। उन्होंने कहा भैया ये बताओ तुम्हारे शरीर में आधा शरीर स्त्री का नहीं है तो कौन जो पुरुष दम भरता है कि मैं पुरुष हूं क्या वो आधा नारी नहीं है? और कौन जो नारी कहती है मैं नारी हूं क्या वो आधी पुरुष नहीं है? लेकिन क्या प्रतीति के आधार पर भाव, प्रतीति के आधार पर भाव, जो प्रतीति के आधार पर भाव बनता है उसी को जगत कहते हैं, जगत और कुछ नहीं। और भाई और आगे चलो भीतर, जब भीतर की ओर चलते हैं तब बोले भाव पहले और आकृति पीछे, या आकृति पहले और भाव पीछे। तो जहां भाव पहले होता है तो भाव कौन सा भाव? मैं सेवा हूं। अरे भाई पुरुष वर्ग ने कह दिया मैं सेवक हूं। अरे सेवक क्या? सेवक माने वो बिंदु कि जो बिखरे तो सेवा हो जाए। ध्यान दीजिए, सेवक माने वो बिंदु जो बिखरे तो सेवक हो जाए। किसी नारी शरीर ने कहा, उसने कह दिया मैं सेविका। सेविका माने क्या? जो बिखरे तो सेवा हो जाए। तो ध्यान दीजिए, तो सेवक होकर भी सेवक का अस्तित्व सेवा होकर विभू होता है, सेवा होकर विभू होता है। और सेविका होकर भी सेविका का अस्तित्व सेवा होकर विभू होता है। अब भाई सेवा क्या है, सेवा क्या है? सेवा का विवेकात्मक जो रूप है वो है अधिकार त्याग। सेवा का जो विवेकात्मक रूप है वो है अधिकार त्याग। और सेवा का जो भावात्मक रूप है वो है प्रियता, वो है प्रियता है, वो है प्रियता। और सेवा का जो क्रियात्मक रूप है वो है मिले हुए का सदुपयोग। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, सेवा का जो क्रियात्मक रूप है वही आज के बुद्धिमान मानव का कर्तव्य है, वही कर्तव्य है। लेकिन है क्या वो सेवा का क्रियात्मक रूप? आप कहेंगे कि सेवा का जो भावात्मक रूप आपने प्रियता बताया, तो प्रियता क्या है? तो ध्यान दीजिए कि जिसमें हमारी आपकी प्रियता होती है, न तो हम और आप उसे बुरा समझते हैं, न हम और आप उसका बुरा चाहते हैं, और न हम और आप उसके साथ बुराई करने की सोचते हैं। तो जब जीवन में बुराई करने की सोचना भी बंद हो जाए और बुरा चाहना भी बंद हो जाए और बुरा समझना भी बंद हो जाए, तब समझना चाहिए कि सेवा का जो भावात्मक रूप था वो सिद्ध हुआ, जो भावात्मक रूप था वो सिद्ध हुआ। और सेवा का विवेकात्मक रूप, बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्यों भाई किसने क्यों नहीं चाहिए? ये सेवा का विवेकात्मक रूप है। तो सेवा का जो विवेकात्मक रूप था उससे असंगता प्राप्त होती है, और सेवा का जो भावात्मक रूप है उससे उत्तरोत्तर प्रियता की वृद्धि होती है, और सेवा का जो क्रियात्मक रूप है उसमें संग्रह का नाश होता है, ममता का नाश होता है। अगर हमारे जीवन में क्रियात्मक रूप से सेवा आ जाए तो न ममता रह सकती है, न संग्रह रह सकता है, और जहां ममता और संग्रह नहीं वहां संघर्ष हो ही नहीं सकता। जितने संघर्ष होते हैं सरकार, वो होते हैं संग्रह में, ममता में। इसलिए आज हम स्थूल दृष्टि से हमारा दर्शन क्या हो जाता है, हमारे रस का क्षेत्र क्या हो जाता है? बहुत बड़ी बात कहेंगे तो ये कहेंगे मिले हुए का सदुपयोग करो। ये भी मालूम है किस अंश में? अपनी जरूरत से ज्यादा हो तब। आज की सेवा का अर्थ क्या? बोले आप कौन है साहब? कि मजदूर दल के लीडर हैं। बहुत सुंदर बात। चलते हैं पैदल के मोटर में? कि चलते तो हैं मोटर में। बात पत्र से करते हैं कि टेलीफोन से? कि बात तो करते हैं टेलीफोन से। हैं? और जाते कब हैं? कि बुलाने पर। और बोले स्वागत कराने पर। देते क्या है? खाली व्याख्यान। लेते क्या है? मजदूरों की कमाई। तो ध्यान दीजिए, ये सेवा का क्रियात्मक रूप नहीं है, ये सेवा का क्रियात्मक रूप नहीं। और आप कौन है साहब? कि हमें साहब मिल ओनर। बोले करते क्या है? कि आपको नहीं मालूम है, हमने अपनी फैक्ट्री में एक स्कूल खोल रखा है। अच्छा भाई, ईमानदारी से बताओ कि जितनी संपत्ति आपने अपने एक लड़के के लिए रखी है उसका कितना छोटा भाग स्कूल में लगाया है? इसको तो महाराज ईमानदारी की बात है, बहुत थोड़ा लगाया है। और किया क्या है? कि लुगाई के नाम अलग फर्म है, और लड़के के नाम अलग है, और साले के नाम अलग है, और बहनोई के नाम अलग है, और दामाद के नाम अलग है, और मालिक? बोले मालिक तो महाराज जी हम ही है। ये क्या है? ये क्या है सोचो? ये हमारी वो ईमानदारी कि जिसको लोग बेईमानी नहीं कहते। जरा सोचिए, लेकिन है क्या? है वो बेईमानी कि जिससे बढ़कर कोई बेईमानी हो ही नहीं सकती। ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि आज सेवा का जो क्रियात्मक रूप है वो कितना दूषित हो गया है। ध्यान दीजिए, कितना दूषित हो गया है कि वो सेवा के क्रियात्मक रूप में भी अधिकार लालसा ज्यों की त्यों, अधिकार लालसा ज्यों की त्यों। और वही हमने सिखाई। इसलिए भाई आज का जो मौलिक प्रश्न है वो यह है कि हमारे और आपके जीवन में जो रस की मांग है वो रस की मांग पूरी नहीं हो सकती अधिकार मांगने से। इसलिए व्यक्तिगत दृष्टि से हम सबको इस बात का विचार करना पड़ेगा कि क्रियात्मक जो सेवा है उसी का नाम कर्तव्य परायणता है। क्रियात्मक रूप जो सेवा का है वो कर्तव्य परायणता है, और कर्तव्य का अर्थ ही है दूसरे के अधिकार की रक्षा और अपने अधिकार का त्याग। इसलिए आज अगर हमको आपको सचमुच रस प्राप्त करना है तो प्रत्येक प्रवृत्ति में अपने सेव्य की सेवा होकर रहना है। प्रत्येक प्रवृत्ति में। बोले से भी कौन है जो प्रकट है,
उस जाने हुए में जब आपकी निष्ठा नहीं रहती, उस जाने हुए में जब आपकी प्रियता नहीं रहती, तो जाने हुए में प्रियता न होना अथवा जाने हुए का प्रभाव न होना अथवा जाने हुए का आदर न करना, इन सब का एक ही अर्थ है। वैसे तो प्रत्येक शब्द के अर्थ में आंशिक भेद रहता है, और वो आंशिक भेद इसलिए नहीं रहता कि अर्थ बदलता है, वो आंशिक भेद इसलिए रहता है कि किसी साधक को किसी प्रकार से समझ में बात आती है और किसी साधक के किसी समझ में बात आती है, क्योंकि समझने का जो प्रकार है वो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग है, अलग अलग है। और यही एक कारण है कि आज हम लोग जो इस बात का प्रयास करते हैं कि जो हम करते हैं वही लोग दूसरा करें, जो हम मानते हैं उसी बात को दूसरे माने, ये जो हमारा आपका जो आग्रह हो जाता है, और खास तौर से सुधारकों का, इस आग्रह ने एक ऐसे स्थायी भेद को जन्म दिया है, एक ऐसे स्थायी संघर्ष को जन्म दिया है कि दो व्यक्ति ईमानदारी से एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं कर पाते। क्यों? क्या प्रेम में बाधा होती है? अजी ये कौन है सर? ये तो मुसलमान है। कोई मुसलमान किसे कहते हैं? कि जो कलमा पढ़ता हो। कोई कलमा का अर्थ क्या है? तो भाई कलमा का अर्थ तो ये है कि सिवा खुदा के कुछ और है नहीं, बात ठीक। और कलमा किस भाषा में है? कि एक अरबी भाषा कहलाती है, बोले उसमें वो कहा गया है। तो किसने कहा है? कि एक खुदा का एक दोस्त था, उसको इल्हाम हुआ और उसने बताया है, बात ठीक है। लेकिन उसका अर्थ क्या है? बोले उसका अर्थ तो यह है कि सिवा खुदा के और कोई है नहीं। बात बड़ी सुंदर। जब सिवा खुदा के कोई और है नहीं तो समझ में नहीं आती कि आप उपदेश करने वक्त किसे करने जा रहे हैं। आप किससे कह रहे हैं कि आप कलमा पढ़िए? कि आप खुदा से कह रहे हैं कि कलमा पढ़िए? ध्यान दीजिए। उसी प्रकार कोई हिंदू महोदय हो, वो कहेंगे वाह सर्वम खलब्धम ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो भाई ब्रह्म से भिन्न तो कभी कुछ नहीं हुआ, फिर आप सिखाने किसको जा रहे हैं? ये किसको आप पाठ पढ़ा रहे हैं? तो इन बातों का उत्तर आज किसी के पास है नहीं। तो करते क्या है लोग कि इन प्रश्नों को ही गलत कर देते हैं। उसी प्रकार जब मैं ये कहता हूं कि आप लोग विवेक का आदर कीजिए, तब भी यही लालचन लग सकता है कि भाई विवेक का अनादर किया तुमने। आप किसको कहते हैं कि विवेक का आदर कीजिए? तो मानव सेवा संघ की नीति में तो आदेश और उपदेश अपने को दिया जाता है,